नमस्कार, मैं सौरभ डीएनए में आपका स्वागत करता हूं। डीएनए की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिसमें एक राज्य सरकार की नाकामी दिखाई देती है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा सुनियोजित हिंसा थी। इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन था ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि वो राज्य के हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। एक आम नागरिक के तौर पर आप इस बयान पर क्या सोचते हैं? अगर आपसे आपके राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगे? आज हम नूह हिंसा का वीडियो विश्लेषण तो करेंगे ही, इसके अलावा नूह हिंसा में राज्य सरकार और पुलिस की सुनियोजित नाकामियों का भी विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम बड़े बड़े ब्रांड्स के हनी ट्रैप का खुलासा करेंगे। आप में से कई लोग रोजाना बाजार में मिलने वाले अलग अलग ब्रांड्स के शहद का सेवन जरूर करते होंगे और सोचते होंगे कि इससे आपकी सेहत को फायदा हो रहा है, लेकिन क्या आप इस बात को लेकर 100% श्योर हैं कि आप जिस ब्रांड का शहद खा रहे हैं वो शुद्ध है और उसमें कोई मिलावट नहीं? इसी बात का पता लगाने के लिए जी न्यूज ने बाजार में उपलब्ध डाबर सहित अन्य ब्रांड्स के शहद की लैब में टेस्टिंग करवाई, जिसके नतीजे आपको हैरान तो करेंगे ही, साथ में परेशान भी कर देंगे। और आज डीएनए में हम एक दुखद समाचार भी आपको देंगे। खबर आई है कि मंगलवार यानी कल देर रात मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली। नितिन देसाई 198 फिल्मों और 200 से ज्यादा टीवी शोज के लिए काम कर चुके थे। हम दिल दे चुके सनम, देवदास, लगान, जोधा अकबर, ऐसी फिल्मों के सेट्स उन्होंने ही तैयार किए थे। इसीलिए इस दुखद खबर ने कई तरह के सवाल पैदा किए। आज डीएनए में हम इन सवालों का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन डीएनए की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। नूह हिंसा के बाद हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था का सच सामने आ गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ साफ कह दिया कि हरियाणा के हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में मनोहर लाल खट्टर परिस्थितियों से हार चुके व्यक्ति की तरह बयान दे रहे थे। एक मुख्यमंत्री होने की वजह से राज्य की जनता जिस सांत्वना और कार्रवाई वाले बयान की अपेक्षा कर रही थी, उस जनता को निराशा ही हाथ लगी। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लोगों को बोल दिया है कि 2,80,00,000 लोगों की सुरक्षा 50,000 या 60,000 पुलिसकर्मी नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि हरियाणा की जनता अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार है।
हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते
हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये मनोहर लाल खट्टर राज्य में होने वाली हिंसा नहीं रोक सकते। ये मनोहर लाल हिंसा पीड़ितों को सांत्वना नहीं दे सकते। ये मनोहर लाल राज्य के लोगों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते। तो अब हरियाणा की जनता समझ नहीं पा रही है कि वो आखिर पिछले 9 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं।
अब ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2.70 करोड़ आबादी है। अब दो करोड़ सत्तर या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000-50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे।
यकीन मानिए, मनोहर लाल खट्टर के राज में हरियाणा की कानून व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में पहुंची। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। हम आपको 4 ऐसी घटनाएं बता सकते हैं जिसमें हरियाणा का मनोहर शासन पूरी तरह से फेल हो गया था। अब आप मनोहर सरकार की नाकामियों की दास्तान सुनिए। नू हिंसा रोकने में मनोहर लाल सरकार नाकाम रही। वो कैसा काम कर रही है आप देख रहे हैं। वर्ष 2014 में रामपाल गिरफ्तारी मामले में भी मनोहर लाल सरकार नाकाम रही थी। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। वर्ष 2016 में जाट आरक्षण के नाम पर भी हिंसा हुई थी, जिसको रोकने में मनोहर लाल सरकार पूरी तरह से नाकाम रही थी। वर्ष 2017 में भी इसी तरह राम रहीम के मामले में भी हिंसा हुई थी, जिसको रोकने में मनोहर लाल सरकार पूरी तरह से नाकाम रही थी। ये वो मामले हैं जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने वही किया जो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा।
वैसे देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर खुद लाइसेंसी बंदूक लेकर प्रजा की सुरक्षा में नहीं लग सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हिंसा के मामले में वो हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो इसका मतलब यही है कि उनके राज में हरियाणा पुलिस भी कुछ नहीं कर रही।
कहीं ना कहीं बड़ी प्रशासनिक चूक रही है, बड़ा प्रशासनिक फेलियर इसको कह सकते हैं, जनता कह सकते हैं। क्योंकि अगर समय रहते तैनाती हो जाती पुलिस की तो कोई ऐसी घटना घटित नहीं होती।
भाजपा की निकम्मेपन को देखकर खास करके मणिपुर और हरियाणा में कानून व्यवस्था से संबंधित जो हालात घट रहे हैं वो देखकर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम्प्लेसेंट है, यानी कि निकम्मी है, उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, या वो कम्प्लिसिट है, यानी कि इस प्रकार की हिंसा कराने में और इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने में उनका एक बहुत भारी योगदान है।
कॉन्स्पिरेसी तो सरकार सो रही थी। इंटेलिजेंस आपके पास है, रिपोर्ट आपके पास है, आपके पास टेक्निकल विंग है, आप सब फॉलो करते हैं और आप बोलते हैं कि हथियार थे, फुला थे। अरे निकम्मे तो आप है ना,
इसमें पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। एक आदमी ने अपने वीडियो वायरल कर दिए और वो खुद वांटेड है, वीडियो आ रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी फरार है। हो सकता है उसको आगे टिकट भी देने MP MLA का। तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं उन तमाम सांप्रदायिक लोगों को जो भाइयों के बीच में नफरत की सौदागरी करते हैं।
नूह में एक सुनियोजित हिंसा हुई, खुद मनोहर लाल खट्टर भी ये स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन इस राज्य की बदकिस्मती है कि जो सरकार सुनियोजित हिंसा नहीं रोक पाई, उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई, उस सरकार को चलाने वाला व्यक्ति एक नाकाम शासक की तरह बातें कर रहा है। अनुष्का गर्ग, राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर एक नाकाम जनसेवक की तरह बात करेंगे तो यकीनन जनता का विश्वास उनके ऊपर से उठेगा। आप सोचिए कि मनोहर लाल खट्टर लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, मुआवजा दे सकते, वो जनता की संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन संपत्ति के नुकसान पर मुआवजे की फुल गारंटी ले रहे हैं। ये भी सच है कि जिस मुआवजे की बात वो कर रहे हैं वो पैसा भी उसी जनता की जेब से आता है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी वो नहीं ले पा रहे। खैर, अब हम DNA में आगे बढ़ते हैं। आज हम नू में हुई वेल प्लान्ड यानी सुनियोजित हिंसा से जुड़े कुछ बड़े खुलासे करते हैं। हमने कल आपको बताया था कि योजनाबद्ध हिंसा का चक्र शोभा यात्राओं के समय चलाया जाता है, योजना बनाना, फिर अफवाह फैलाना, इसके बाद पथराव और फिर उसके बाद हिंसा की शुरुआत होती है। यही पैटर्न हमेशा फॉलो किया जाता है। आज हम इससे जुड़े कुछ सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें हम आपको ऐसे सोशल मीडिया चैट्स और कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसमें साफ साफ नजर आता है कि कुछ लोग शोभा यात्रा को टारगेट करने की विशेष योजना बना रहे थे। हमने सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले ऐसे व्यक्तियों के नाम छिपाए हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि पुलिस इन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है और इन अकाउंट्स के मालिकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पर ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें लिखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार रहें, किसी से कुछ कहे बिना एक टीम आगे रहे और दूसरी टीम पीछे रहे। इस पोस्ट में कुछ शब्द आपत्तिजनक भी हैं, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। इस पोस्ट में शोभा यात्रा को घेर कर हमला करने की योजना बनते हुए नजर आती है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से नूह में इकट्ठा होने की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मेवात के अलग अलग इलाकों से नूह में बुलाया गया था। ये एक व्हाट्सएप चैट है, इसमें कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी हैं। इसमें हम आपको मैसेज करने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकते, ना ही हम आपको इस ग्रुप का नाम दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको वो बातें जरूर दिखाना चाहते हैं जो इसमें लिखी हैं। इसमें एक व्यक्ति ने लिखा है कि अगर लोगों ने हिम्मत दिखा दी तो फिर आगे से कोई भी मेवात से गुजरने से पहले 100 बार सोचेगा और इस तरह के लोग रैली लेकर नहीं आ सकते। इस पोस्ट से एक बात साफ है कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शोभा यात्रा को रोकने की योजना पहले से ही बनाई जा रही थी। यात्रा को रोककर एक तरह के शक्ति प्रदर्शन की योजना थी। नूह हिंसा को लेकर कहा गया कि एक अफवाह की वजह से हिंसा फैली थी। ये अफवाह मोनू मानेसर की मौजूदगी को लेकर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी दिख रहा है कि मोनू मानेसर के यात्रा में शामिल होने की अफवाह कैसे फैली। इस व्यक्ति की पोस्ट के एक कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा है, एक्सीडेंट का कोई केस नहीं होता है, जमानत हो जाती है। पहली बार में पढ़ने पर यह चैट सामान्य लगती है, लेकिन इस व्यक्ति की एक दूसरी पोस्ट से एक बड़ी साजिश का पता चलता है। इस दूसरी पोस्ट में यही व्यक्ति लिख रहा है कि मेवात वासियों से निवेदन है कि जो भाई ड्राइवर है वो 31 जुलाई को मेवात में डंपर गाड़ी चलाए और मेवात की इज्जत बचाए। ऐसा संदेह है कि भीड़ पर गाड़ियां चढ़ाने की बड़ी साजिश की जा रही थी जिसमें डंपर चालकों को एक्सीडेंट करने के लिए उकसाया जा रहा था और साथ ही ये बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट केस में जमानत हो जाती है। एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली है, इसमें वो अपील कर रहा है कि हवाबाजी मत करो और सारे वीडियो हटा लो। संदेह जताया जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए हिंसा वाले ऐसे वीडियो हटाने की सलाह दी गई है जिसमें यात्रा को छिन्न भिन्न करने की सफलता दिख रही हो। संदेह पर मुहर लगाती एक और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है। इसमें एक व्यक्ति ने साफ साफ लिखा है कि जिन भाइयों ने रील वीडियो डाली है उसे जल्दी से जल्दी हटा दो, खुद सबूत मत बनाओ। मतलब ये है कि उपद्रव के वीडियो जल्दी हटा लिए जाएं ताकि पुलिस उनको सबूत के तौर पर इस्तेमाल ना कर पाए। नूह में हिंसा सुनियोजित थी और इस पर मुहर लगाती हुई एक और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है। इसमें लिखा है कि मेवात के अंदर जो जोश देखने को मिला उसका क्रेडिट मम्मन खान को जाता है, इसी की वजह से बुजदिल कौम में भी जोश आया। ये पोस्ट से पता चलता है कि यात्रा को टारगेट करना और हिंसा को लेकर एक खास वर्ग एक दूसरे की पीठ थपथपा रहा है। नूह में इकट्ठा होने के लिए कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, पुलिस इनकी भी जांच कर रही है। इस वीडियो में दिख रहे लड़कों में से एक लड़के ने यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन के लिए लोगों से आने की अपील की है। इससे पता चलता है कि लोगों को नूह में पहले से ही इकट्ठा हो जाने के संदेश दिए जाने लगे थे। अब हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें ये नजर आएगा कि हिंसा के दौरान जमकर फायरिंग की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फायरिंग दंगाइयों की तरफ से की जा रही थी। यही नहीं, अपनी रिपोर्ट में हम आपको ये हिंसा पीड़ित परिवार ने कैसे उसका दर्द झेला और हरियाणा पुलिस की नाकामी के सबूत, ये सब हम आपको साथ में दिखाने जा रहे हैं।
न्यू हिंसा में मंदिर पर हमले के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो उस डर को दिखाती है जो डर मंदिर के अंदर और बाहर छिपे लोगों ने महसूस किया। इस वीडियो में कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जो बता रहे हैं कि पहाड़ियों पर छिपे दंगाई मंदिर की ओर फायरिंग कर रहे हैं।
ये पहाड़ों पर बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे।
मंदिर के बाहर लोग गाड़ियों की आड़ लेकर छिपे हुए हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, सुरक्षा कर्मी भी फायरिंग की रेंज में आने से बच रहे हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। इस वीडियो में सुनाई देता है कि दंगाइयों ने 5 से 6 राउंड फायर किए।
देख रहे ना, वो लेट खान ले जा रहे हैं, देखो।
इस वीडियो से एक बात साफ थी कि यात्रा पर हमला करने की योजना बनाने वाले हथियारों से लैस थे। उनका मकसद बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि फायरिंग के बीच पुलिस हमेशा छिपी रही। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे लोग मंदिर के अंदर छिपे हुए दिखते हैं। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी भी है जो अपनी बंदूक से दंगाइयों को भगाने के लिए 9 राउंड फायर करता है। नूह में हिंसा के दौरान एक और मंदिर पर हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। इसमें कुछ दंगाई मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसमें पहले एक दंगाई गेट का हैंडल पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता दिखता है, उसके बाद दूसरा दंगाई पत्थर से उसका हैंडल तोड़ देता है। इसके बाद एक और दंगाई आता है जो मंदिर के गेट पर लगा सीसीटीवी कैमरा देखता है और तोड़ देता है। इसी तरह रेवाड़ी के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं खाना खाती दिखती हैं, लेकिन तभी एक युवक यहां भागकर आता है जिसके पीछे बड़ी संख्या में दंगाई भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। न्यू हिंसा में पीड़ित परिवारों के दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। आपको अभिषेक याद होगा, दंगाइयों ने इस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमने अभिषेक के भाई महेश से बात की। महेश ने नू हिंसा को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं।
एक बार जानने की चेष्टा करूंगा कि कल हुआ क्या था।
हुआ ये था जी, हम सुबह पहुंच गए थे यहाँ पे 10:30 के करीब, और 1.5-2 घंटे के बाद हमने दर्शन करके उसके बाद अंदर घूम के हम वापसी चल दिए थे। वहाँ पे अपना ये बाईपास लगता है, कौन सा लगता है, तो यहाँ पे पथराव शुरू हो गया गाड़ियों पे, और गाड़ियों के बाद पथराव शुरू होने के बाद इतनी वहाँ पे मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, पुलिस फोर्स नहीं थी, कोई नहीं था। तो उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। उसमें गाँव वालों की संख्या ज़्यादा थी, हमारे वालों की कम थी, क्योंकि हमारी कुछ ही गाड़ियाँ वापसी गई हुई थी, मोस्टली अपनी यहाँ पे मंदिर में थी, और जो मंदिरों में थी उनको वहाँ की सिचुएशन का पता नहीं था जब तक। उसके बाद फिर उन्होंने उनकी संख्या ज़्यादा हुई, उसके बाद उन वहाँ से हम वापसी मंदिर की तरफ भगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उधर से फिर फायरिंग भी होने लगी थी। तो सब अपनी जान बचाने के लिए वापसी मंदिर की तरफ भागे, क्योंकि सारी तरफ से घेर रखा था। तो फिर हम 2 बजे के आसपास वापसी मंदिर में पहुँच गए थे। उसके बाद अंदर ही रहे, अंदर रहने के बाद मंदिर में सेफ, जब तक सेफ थे। उसके बाद प्रशासन के लिए कॉल भी करी, बहुत कुछ करा, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया। प्रशासन भी आया, एक बार बोल दिया हमें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी अपनी लड़ाई है, खुद लड़ लो। वापसी चली गई PCR। उसके बाद 5:30 बज गए, ऐसे ही हमें वेट करते करते प्रशासन का। उसके बाद 5:30 बजे उन्होंने, जब तक गाँव वालों ने, और ज़्यादा भारी संख्या में इकट्ठे हो गए वो हथियार, उनके 50 आदमी, 100 आदमी कम से कम होंगे जो हथियार के साथ थे, और वैसे टोटल 1500 के आसपास मंदिर की तरफ भाग पड़े वो, और उसमें ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग में गोली लगी है भाई है मेरा अभिषेक, उसको जो कि अब रानी। तो उसके बाद हमने भी अपनी जैसे तैसे जान बचाई। जान बचाने के बाद हम शाम के टाइम प्रशासन आया, उसके बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया था, कुछ लोगों की हत्या हो चुकी थी, कितनों को मार पीट चुके थे, कितनों की गाड़ियाँ नष्ट कर दी थी, उसके बाद जाके कहीं प्रशासन आया, फिर उन्होंने अंदर जो वो थे सब कार्यकर्ता जो भी थे दर्शन करने आए हुए थे, फिर उनको अपनी उसके साथ बाहर निकाला सेफ्टी के साथ। वहाँ पे फायरिंग मंदिर के अंदर तक भी हो रही थी, अंदर तक भी चले गए थे, और हथियार बहुत है इनके पास, हथियार बहुत थे, ऐसे हथियार पुलिस वालों के पास भी नहीं थे जैसे उनके पास थे, इस तरीके से फायरिंग हो रही थी।
महेश जी, बताया जा रहा है उनकी गर्दन पे तलवार का निशान था।
अभी हम जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमें कल से तो हमें बॉडी का भी नहीं पता लग रहा था कि हमारा भाई है नहीं है, कल से तो कहा जा रहा था कि हाँ भाई ठीक है अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आज पता लगा तो नहीं है। तो आज हम यहाँ पहुंचे थे मेडिकल, तो यहाँ पे उन्होंने हमें फोटो दिखाई है, उसमें देखा गया कि तलवार से दो बार गला काटा हुआ है, उसके बाद गोली मारने के बाद भी, उसके बाद उसके चेहरों पे पत्थर भी बरसाए गए हैं कि पहचान ना हो सके,
पूरा चेहरा छत विचित्र,
पूरा हाँ पूरा चेहरा ऐसा कर रखा है कि पहचान ना सके।
महेश जी, आपकी भी चोटें आई हैं?
हाँ, पत्थरबाजी हमारे ऊपर भी हो रखी है, कमर वगैरह में, पैर वगैरह में बहुत चोट है, डंडे वगैरह भी लगे हुए हैं, गोलियां भी हमारे बिल्कुल पास से गई हुई है, बाकी यहाँ पे आना सेफ नहीं था बिल्कुल भी।
महेश की बातों से एक बात साफ है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ शोभा यात्रा पर हमला करने पहुंचे थे, और पुलिस के पास इन दंगाइयों को रोकने की कोई तैयारी नहीं थी। यही नहीं, पुलिस कर्मियों ने जब देखा कि दंगाइयों के पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं, तो ये देखकर वो पीछे हट गए। आप सोचिए, वो पुलिसकर्मी जिनके पास दंगाइयों से निपटने की ट्रेनिंग होती है, उनमें भी कुवत नहीं थी कि वो भिड़ सके। दंगाइयों को मिली खुली छूट और पुलिस की नाकामी का एक बड़ा उदाहरण साइबर पुलिस स्टेशन भी था, जिसको दंगाइयों ने खास तौर से टारगेट किया।
हिंसा पे उतारू बेकाबू हुई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन तब क्या, जब भीड़ के निशाने पर ही पुलिस हो। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, दो दो SHOs की गाड़ी है, जिनकी हालत जो भीड़ ने क्या कर दी है। न सिर्फ इन दो गाड़ियों के साथ ही तोड़फोड़ की गई है, बल्कि यहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन है, इसके ऊपर भी हजारों की संख्या में जो उपद्रवी थे वो आए, भीड़ ने इस थाने को भी निशाना बनाया। ये साइबर क्राइम का जो थाना है नूह का, उसके ऊपर जो है हमला किया गया था, और इस थाने के अंदर घुसने के लिए इस भीड़ ने बाकायदा सड़क पे से जा रही इस बस को लूटा, और लूटने के बाद इस बस को लेकर आए, और सबसे पहले जो टक्कर है वो जो मेन गेट है नूह जो साइबर पुलिस थाने का है उस पे मारी, लेकिन गेट चूंकि मजबूत था इसलिए टूट नहीं पाया, जिसके बाद इस दीवार से टक्कर मारकर इस दीवार को गिराया गया, और यहाँ से रास्ता बनाने के बाद भीड़ थाने के अंदर दाखिल होती है।
हमने आपको नूह हिंसा के दौरान साइबर थाने में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें दिखाई। इस वारदात के बारे में एक नई जानकारी सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मेवात के साइबर थाने पर हुआ हमला आर्थिक अपराधों के मामले में मेवात क्षेत्र में हुई पुलिस की कार्रवाई का बदला था।
ये जंपिंग द कंक्लूजन है, एट दिस स्टेज हम इस तरह के कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने एक अच्छी एक बढ़त हासिल की है, 116 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इन द वेरी फर्स्ट डे, और हमारी बाकी लोगों की पहचान जारी है। आप जान सकते हैं इसमें कहीं काफी सारे लोग युवा जो है इन्वॉल्व थे, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों की इसमें पहचान करनी है, और ये भी देखना है कि ऐसा भी ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में किसी निर्दोष व्यक्ति को हम धरपकड़ करें। हमें इसमें निष्पक्ष जांच करते हुए हमें इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, और बहुत जल्दी हमें इसमें करना है, हमारी टीमें मुस्तैदी से लगी हुई हैं।
दरअसल मेवात हाल फिलहाल में देश में हो रहे आर्थिक अपराधों का गढ़ बन गया था। इसी वर्ष अप्रैल में हरियाणा पुलिस ने मेवात के 320 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 126 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसमें से 65 लोगों को अलग अलग आर्थिक अपराधों में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार भी किया था। पुलिस को अपनी छापेमारी में 166 नकली आधार कार्ड, 128 ATM कार्ड, 99 सिम कार्ड, 66 मोबाइल फोन और 5 POS मशीनें मिली थी। जून 2023 तक देश की साइबर क्राइम सेल ने मेवात इलाके के 5 लाख से ज्यादा सिम कार्ड को आर्थिक अपराधों में शामिल रहने की वजह से ब्लॉक किया है। यही वजह है कि नू में हुई हिंसा में साइबर पुलिस स्टेशन पर खास तौर से टारगेट किया गया था। इस हमले को अपराधियों का बदला माना जा रहा है। अनुष्का गर्ग, राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दूसरी हिंसा दंगाइयों की बड़ी साजिश और राज्य सरकार की ढिलाई का नमूना है। ये बात राज्य सरकार भी जानती है कि उसे दंगाइयों की योजना के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब जनता को उम्मीद है कि राज्य सरकार दंगाइयों को तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी। हमने नूह हिंसा के ताजा हालात पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें हिंसाग्रस्त इलाके के लोगों का दर्द छलक रहा है। और यही नहीं, इसमें उन लोगों की भी कहानियां हैं जिन्होंने हिंसा की दहशत में अपने घर बार तक छोड़ दिए।
हिंसा के दूसरे दिन भी नू में धारा 144 लगी हुए इंटर सेवा बंद है, लेकिन शांति बहाल करने के लिए लगातार गश्त लगाया जा रहा। पुलिस के द्वारा आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है।
आप सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बाजार खोले, दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को खोले।
ये तस्वीरें हैं जुम्मा बाजार की, जहां पर प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यहाँ पर जो भी व्यापारी हैं दुकान खोल सकते हैं। कर्फ्यू में ढील दी गई है ताकि लोग अपने जरूरत का सामान यहाँ से खरीद सकें। और ये भी कहा जा रहा है कि एक साथ 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर वो इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की सकती है। दो दिन हो गए हैं, अभी क्या हालात है?
अभी हालात ठीक नहीं है सर, यहाँ पर सबको डर लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है जी।
इस बात का डर आप लोगों के मन में?
भाई ये चढ़ाव पथराव कर रहे हैं, सारा बाजार लूटा गया है। यात्रा के दौरान, यात्रा से करते ये लोग बागों को परेशान किया है। इसमें रोहिंग्याओं का ज्यादा हाल हुआ है, बाहर से लोग आए हैं, राजस्थान से सारे लोग आए हैं जिन्होंने लोगों को पथराव किया है, दुकानें फूकी हैं, गाड़ियां जलाई हैं, हमारे भाई लोगों को मारा है।
क्या बाहर के लोग भी आए थे?
हाँ, बाहर के लोग थे, राजस्थान के लोग भी बता रहे हैं।
अच्छा,
राजस्थान का
तोड़फोड़ करने में
बाहर के ऊपर से भी आए हैं। तो अपने जो यहाँ पे एक कॉलोनी है, रोहिंग्या की कॉलोनी है, वहाँ से लोग भी आए हैं। बताया हाँ जी।
और ये बताइए कि अभी भी आप लोग के मन में डर है?
हाँ डर है, बहुत डर है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डर है।
डर लगता है बाबा?
हाँ जी डर लगता है। हाँ जी,
कैसे बचे थे उनसे? क्या पुलिस आई थी कि आप लोगों के लोग भी लड़ रहे हैं?
पुलिस नहीं आई, हमारे बालक और हमारे आदमी लड़ रहे, पत्थरों से मार मार के अपना बचाव किया और दुकान बचाई।
उधर से चला रहे हमने अपनी जान बचाई है, पता नहीं कैसे बचाई है, वो हम नहीं जानते, वो हमारे बच्चे जानते हैं। उन्होंने इतना बुरा हाल किया था ना कि वो लोग ये चाह रहे थे कि हमें उठा के ही ले जाएं। हमारे को अपनी जान मान का बहुत खतरा है, हमारे को सुरक्षा मिली जाए बस।
अभी तक यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन
कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारी दुकानें जला दी गई है, हमारी दुकान तोड़ दी गई है, हमारे बच्चों को मारा गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन जो अभी इनको चोट लगी हुई है वो यहाँ पे नहीं है, हमने बाहर भेज दिए। हमारे बच्चों को भी खतरा है, हमें भी खतरा है, हमें बहुत खतरा है। यहाँ पे एक पुलिस नहीं है, यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे पुलिस है यहाँ पे कोई? आप बताइए कोई है तो मुझे बताओ।
आप लोगों को क्या पुलिस यहाँ पर नहीं?
नहीं नहीं, कोई नहीं आया, कोई सुरक्षा नहीं मिली हमको।
उसके बाद भी
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब तक भी कुछ नहीं है सर। सर जी अब तक भी कुछ नहीं है, अब कभी प्रशासन ने कोई वो नहीं करी हमारे संग। हम तो देख रहे थे छत पे से, तो हमारे ऊपर भी पत्थर बरसाने लगे, हमारे छतों पे आके पड़े पत्थर।
जान बचाइए, वो तो घर तक पहुँचने की हिम्मत करी हमने, पर हमारे बच्चों ने हमने पत्थर फेंके जब वो भगे हैं। ऐसे अपना जान भर भर के बचाई, अपने बच्चे नीट से मारे हैं मैंने अपने।
आप लोगों की दुकानें भी लूट,
दुकान भी लूट रखी, आग भी लगा दी दुकान, कोई ऐसा कुछ नहीं छोड़ा उन्हें, घर के शीशे तलक के फोड़ गए।
तो हमारा एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें एक पक्ष जो कि मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, और सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट करी भाई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये दुर्भाग्य क्या हिंदुओं का ही है? हम अपना त्योहार नहीं मना सकते कहीं भी, हमें सीएम साहब से भी ऐतराज है कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी जबकि उन्हें यह कहना चाहिए था एक पक्ष को मजबूर किया जान मार के आने के लिए, उन पर हमला किया, पेवर साजिश के तहत हमला किया। इसमें आपका अहमद जी भी हैं, मम्मन खान इंजीनियर भी हैं, इनके उकसाने पे सारा काम हुआ है। 5 घंटे लगातार प्रशासन आंख मूंद के पड़ा रहा, कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया फोन करने के बाद। यहाँ तक कि सबने डीसी एसपी साहब तो पता नहीं छुट्टी पर कहीं, तो उन्होंने किसी का भी नहीं उठाया, और कोई भी ना पुलिस ना फोर्स ना कोई भी, शाम के 7 बजे तक कोई फोर्स नहीं पहुंची यहाँ पे। हम खुद यहाँ पे खड़े रहे इस मंदिर पे, गोरखनाथ मंदिर। हिंदू समाज भयभीत है, बहुत डरा हुआ है, यहाँ शहर के अंदर भाईचारा था लेकिन वो सारा इन्होंने बदनाम कर दिया, सारा शहर जो है लूटपाट की हिंदुओं के साथ। अभी तक जो मीडिया में दिखा रहे थे 5 लोग मरे हैं, इससे ज्यादा कम 30-40 संख्या में लोग मरे हैं, 30-40 से ज्यादा लोग यहाँ से गायब है अभी तक, जिनके अभी तक ये नहीं पता कि मरे हैं जिंदे कहाँ कहाँ नहीं है।
कुछ हिंसक लोगों ने कहीं ना कहीं नू को अशांत करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मजदूर थे, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, सभी काम सभी चीजें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मजदूर थे अब वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।
राशन पानी नहीं मिल रहा सर, यहाँ के बैठ के क्या करेंगे हम।
अच्छा, तो अभी
पैसे भी नहीं है,
पैदल ही चले जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे?
जब तक वहाँ नहीं मिलेगा पैदल जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं?
हाँ जी।
तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूंगा, वो ऐसी तस्वीरें, कई तस्वीरें जो हैं वो अब यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गई, क्योंकि आसपास के कई इलाके जहाँ पे लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ से लोग निकलते थे, यहाँ लोग रहते थे, वो अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर न उनको खाने को मिल रहा है और न ही उनके पास अब काम बचा हुआ है, इसलिए शायद उनको अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया न्यूज।
अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बड़े नामी ब्रांड्स के हनी ट्रैप की जानकारी देंगे। आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान माना गया है। शहद के सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बरकरार रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, यहाँ तक कि नियमित शहद खाने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक औषधियों में भी शहद का इस्तेमाल होता है। आप में से बहुत से लोग शहद खाते होंगे। गुनगुने पानी में लोग ये सोचकर शहद लेते हैं कि वो पतले हो जाएंगे। डायबिटीज के कई मरीज चीनी के विकल्प के तौर पर शहद की चाय या कॉफी पीते हैं। यहाँ तक कि भारतीय परिवारों में नवजात बच्चे के अन्नप्राशन में सबसे पहले शहद की बूंद चटाई जाती है, ये सोचकर कि शहद प्रकृति से मिलने वाली सबसे शुद्ध वस्तु है। लेकिन मिलावट के इस दौर में अब अमृत समान शहद के नाम पर कैसे आपको विष बेचा जा रहा है, आज हम इसका लैब टेस्टेड खुलासा करेंगे। मेरे हाथ में इस वक्त ब्रांडेड शहद का एक डिब्बा है, जो दावा करता है कि वो देश ही नहीं दुनिया भर का नंबर 1 ब्रांड है। आप में से कई लोग इस ब्रांड के शहद का सेवन भी करते होंगे। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ब्रांडेड कंपनी का शहद है तो इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन क्या ये शहद असली है, शुद्ध है जैसा कि कंपनियां दावा करती हैं? इसका रियलिटी चेक करने के लिए जी न्यूज ने कई महीनों तक रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जी न्यूज ने देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद के कई बड़े और छोटे ब्रांड्स का लैब टेस्ट भी करवाया है, जिसके नतीजे जितने हैरान कर देने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा परेशान कर देने वाले भी हैं।
बड़े बड़े ब्रांड्स दावा करते हैं कि उनका शहद सबसे शुद्ध है और जीरो मिलावट का दम भरते हैं, लेकिन क्या वाकई डाबर जैसे बड़े ब्रांड के शहद शुद्धता की कसौटी पर खरे उतरते हैं?
शहद में शहद है ही नहीं, चीनी है, ऐसी बहुत सारी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हमें भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने संपर्क करके ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनका शहद शुद्ध है, लेकिन आम आदमी सोफिस्टिकेटेड लैब टेस्ट नहीं करवा सकता, क्या इसी का फायदा कंपनियां उठाती हैं?
हमने बाजार से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद के 2 सैंपल उठाए, जिसमें से एक सैंपल सबसे बड़े ब्रांड डाबर का था, और फिर इन सैंपल्स को लैब टेस्टिंग के लिए भेजने की तैयारी शुरू की।
मेरे सामने यहाँ पर एक ये सैंपल है जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड डाबर हनी का सैंपल है, जिसे आप देख सकते हैं। ये 1 किलो की बॉटल है और सैंपलिंग के लिए हमें 700 ml से कुछ ज्यादा की जरूरत है। इसी तरह से एक और हनी है जिसका बहुत नाम नहीं है, लेकिन ये मार्केट में ऑर्गेनिक हनी के नाम से बिकता है। मल्टी फ्लोरा हनी सुपर बी नाम की कंपनी इसे बनाती है। और इसके अलावा हमने, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा भरोसा, या ये कह लें कि खुद कंपनी दावा करती है कि सबसे ज्यादा भरोसा डाबर के हनी पे किया जाता है, तो डाबर के ही ऑनलाइन पोर्टल से हमने ये सैंपल मंगाया है जो हम तक पहुंचा है। इसे हम आपके सामने ही खोलते हैं और हम एक एक करके तमाम सैंपल्स को टेस्ट करेंगे और आप तक लेकर जाएंगे। इसकी सील खुल रही है आप ही के सामने। ये ऑर्डर नंबर आपके सामने है 2150214, जो डाबर के ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ सैंपल है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आप तक पहुंचने वाला जो शहद है वो असल में कितना शुद्ध है।
हमने दोनों सैंपल्स को उनके ब्रांड्स के डिब्बों से निकालकर दूसरे डिब्बों में स्टोर किया है, ताकि जब हम लैब में ये सैंपल भेजें तो पता ना चले कि कौन सा शहद किस ब्रांड का है।
ये पहला सैंपल अब शिफ्ट हो रहा है, जिसको हमने सैंपल 1 का नाम दिया है। आपको मालूम है कि ये कौन सा सैंपल है, लेकिन जो कंपनी, जो लैब इसको टेस्ट करेगी, उसे ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन से सैंपल का टेस्ट कर रही है। इसमें हम एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये तमाम तरह के टेस्ट जो हैं वो करेंगे और उनकी जानकारी आपसे साझा करेंगे।
शहद की टेस्टिंग करने वाली मान्यता प्राप्त लैब्स की संख्या देश में गिनी चुनी है। ज्यादातर प्राइवेट लैब्स ने हमारे सैंपल को टेस्ट करने से ही इनकार कर दिया। गुड़गांव की एक नामी लैब कंपनी फेयर लैब्स ने हमारे सैंपल टेस्ट करने के लिए हामी भरी। हम सैंपल लेकर पहुँचे। कंपनी के एक्सपर्ट ने सैंपल रिसीव करते समय हमसे बाकायदा कैमरे पर बात भी की।
ये हमारे सैंपल्स हैं जो रिसीव किए गए थे और ये लैब में पहुंच चुके हैं, यानी कि टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन टेस्टिंग की कैसे जाती है, आप तक जो नतीजे पहुंचते हैं उसके पीछे किस तरह की साइंस अप्लाई की जाती है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं हमारी टेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है, तो आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे?
सबसे पहले मैम इसको हम वे करें, अपना सैंपल, अपना आपका सैंपल यहाँ निकाल लिया हमने, देन इसको वेइंग बैलेंस में जाएंगे, इसको वे करेंगे। हम हमारे 2 पैरामीटर है, C3 और C4 शुगर। C3 के लिए हम LC IRMS से करते हैं और C4 के लिए हम EA IRMS से करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना C3 शुगर। C3 शुगर के लिए हम वेइंग बैलेंस में जाएंगे, वहां पर हम वेट करेंगे।
तो ये वेइंग बैलेंस इस वक्त हो रहा है, ये बहुत जरूरी है क्या आयुष इसको करना?
जी मैम।
किस लिए किया जाता है?
क्योंकि हमारी पूरी SOP बनी हुई है, हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो FSI के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जैसे FSI में मेथड दे रखा है, एडिटिव्स, हम वैसे ही इसको फॉलो करते हैं। C3 शुगर के लिए LC IRMS जो हम करते हैं उसमें हम अपना 10 mg वेट लेंगे। 10 mg वेट लेकर ये हमने वेट ले लिया 10 mg।
जी।
देन उसके बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के लिए हमें सैंपल प्रेशनरी रूम में जाना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के बाद इसको हम वॉटर टेस्ट करते हैं। वॉटर टेस्ट करने का वॉटर
ये क्या करता है?
ये इसको मिक्स कर देता है सर।
अच्छा, इसको मिक्सिंग, तो कुछ इस तरह से सैंपल प्रिपेयर हो जाते हैं।
ये होमलाइज हो गया सैंपल, प्रॉपर डिजोल्व हो गया हनी अपना वाटर के अंदर। देन इसको हम अब फिल्टर करेंगे 0.45 नायलॉन फिल्टर पेपर से। ये हमारा 0.9 का फिल्टर पेपर है, इसे हम फिल्टर करेंगे। ये हमारी HPLC वायल, इसके अंदर कलेक्ट करके हम इसको अपने LC IRMS में इंजेक्ट करेंगे।
तो वो इतना सा सैंपल होता है जो असल में टेस्टिंग के लिए जाता है,
क्योंकि इसमें जो हमें चाहिए होता है वो 20 μl चाहिए होता है सिर्फ। जो इसकी लूप है वो 50 μl का है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 20 μl की।
तो मिलावट कितनी भी बड़ी हो, सैंपल छोटा सा होता है और उसके आगे का काम मशीन्स करती हैं।
हमें उम्मीद थी कि जल्द ही हमें टेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से एक ईमेल भेजा गया, जिसमें कहा गया कि शहद की टेस्टिंग करने वाली मशीन का एक पार्ट टूट गया है, जिसे उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। यानी लैब शहद का टेस्ट करने से ही मुकर गई। लेकिन हमने हार नहीं मानी और फिर शहद के सैंपल्स को लेकर हम पहुंचे गुजरात के आणंद में स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लेबोरेटरी सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड के सेंटर पर, जो देश की सबसे विश्वसनीय टेस्टिंग लैब है।
हम तक और आप तक शुद्धता के नाम पर जो चीजें पहुंचाई जाती हैं, वो दरअसल कितनी शुद्ध होती हैं, इसे परखने के लिए आम आदमी के पास कोई जरिया नहीं है, तो जी मीडिया अब आपके लिए वो जरिया बना है। हमने अहमदाबाद की 3 अलग अलग लोकेशन से शहद के 3 अलग अलग सैंपल्स उठाए हैं और इन्हें शुद्धता की हर कसौटी पर अब हम परखेंगे। तो शहद का शहद और चीनी की चीनी या फिर कोई और भी मिलावट अगर इसमें पाई जाती है, तो उसके नतीजे भी आप तक FSSAI से प्रमाणित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में परखे जाएंगे, नतीजे आपसे साझा किए जाएंगे। इस काम के लिए हमने दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आनंद तक का सफर तय किया है, ताकि आप तक जो नतीजे पहुंचे उसमें सिर्फ शुद्धता वाली मिठास हो, कोई मिलावट वाली कड़वाहट ना हो।
लैब में शहद के सैंपल्स की जांच उन सभी 40 मानकों पर की जानी थी जो भारत में शहद बेचने के लिए जरूरी है, तो सैंपल लैब में जा चुके थे और हमें इंतजार था टेस्ट रिपोर्ट का। तो क्या शहद के बाजार में मार्केट लीडर, बिक्री में नंबर 1 डाबर हनी शुद्धता के मानकों पर खरा उतरा? इन सारे सवालों के जवाब इस टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज है।
बाजार में मिलने वाले नामी ब्रांड्स के शहद की लैब टेस्टिंग के नतीजे आ चुके हैं। हमने 2 ब्रांड्स के शहद के 3 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे और दोनों ही सैंपल एक खास पैरामीटर पर फेल हो गए। दोनों ही कंपनियों के शहद में एक खास कंपाउंड की मात्रा तय सीमा से 2 गुने से भी ज्यादा मिली। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरफ्यूरल यानी HMS। डाबर के जिस शहद का सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए भेजा उसमें HMS की मात्रा 176.57 मिलीग्राम मिली। तय मानकों के मुताबिक ये मात्रा किसी भी स्थिति में 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाबर के ही दूसरे सैंपल में भी HMS की मात्रा 97.250 मिलीग्राम मिली, जबकि एक अन्य ब्रांड में श्रीजी हनी का सैंपल भी टेस्ट में फेल हो गया, जिसमें HMS की मात्रा 135.16 मिलीग्राम थी। यानी तीनों ही सैंपल शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये HMS है क्या और ये सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। HMS एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कुछ मात्रा में मीठी चीजों में पाया जाता है। आमतौर पर शुद्ध और ताजा शहद में HMS की मात्रा प्रति किलो 15 मिलीग्राम तक होती है। शहद के अलावा HMS ब्रेड्स और बेकरी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक शहद में HMS की मात्रा प्रति किलो 40 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गर्म इलाकों में बनने वाले शहद के लिए ये मात्रा प्रति किलो 80 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। लेकिन बाजार में मिलने वाले बड़े ब्रांड्स के शहद के जो सैंपल्स हमने टेस्ट करवाए हैं उनमें HMS काफी ज्यादा है। टेस्ट रिपोर्ट साफ साफ इसका खुलासा कर रही है। लेकिन जब डाबर जैसी कंपनियां एकदम शुद्ध शहद बेचने का दावा करती हैं, तो फिर उनके शहद में HMS की मात्रा ज्यादा कैसे मिली और क्यों मिली? तो इसकी एक वजह हो सकती है। अमेरिका की नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शहद में HMS की मात्रा तब बढ़ जाती है जब शहद बहुत पुराना हो, शहद को प्रोसेसिंग के दौरान ज्यादा गर्म किया गया हो, शहद में मॉइस्चर यानी नमी ज्यादा हो, शहद का स्टोरेज सही तरीके से नहीं किया गया हो, शहद में चीनी जैसे शुगर सिरप की मिलावट की गई हो, या शहद को मेटल के कंटेनर में रख दिया गया हो। इन सभी वजहों से शहद में HMS कंपाउंड ज्यादा हो सकता है। और मेरे पास जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो साबित करते हैं कि डाबर जैसे बड़े ब्रांड्स के शहद में भी HMS की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा पाई गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार में मिलने वाला शहद शुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर शहद में ये मिलावट क्यों हो रही है, तो इसका जवाब एक्सपर्ट से आप खुद जान लीजिए।
जो सैंपल्स की रिपोर्ट आज आप मेरे सामने लेके आए हैं उसमें दो तीन चीजें साफ दिख रही हैं। एक तो इसमें जो एचएमएफ कंटेंट है, फरफरल कंटेंट जो है, वो काफी ज्यादा है, स्टैंडर्ड से ज्यादा है। ये इस बात को बताता है कि कंपनियां सस्ता रॉ मटेरियल खरीदती हैं जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा कि जब हनी प्रोडक्शन होता है, जब छत्ता लगता है मधुमक्खी का, तो उसके चारों तरफ एक वैक्स कोटिंग हो जाती है, उसको मैच्योर हनी या पूरी तरह से राइप हनी बोलते हैं। लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि कमर्शियल दुनिया है, तो बहुत बार जब हल्का सा भी छत्ता लगता है तो किसान उसको हार्वेस्ट करके बेचने आ जाता है, ये कहके कि हनी है। उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। जब मॉइस्चर ज्यादा होता है और आपका जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि मॉइस्चर 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नेचुरल हनी में 30-35-40 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंपनियां फिर उसको हीटिंग प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर हटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हीटिंग करते हैं तो जो शुगर होता है हनी के अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो जब आप हीटिंग करते हैं तो फरफरल कंटेंट बढ़ जाता है। तो जो सैंपल की रिपोर्ट्स आप लेके आए हैं वो ये बताता है कि इसमें जो फरफरल कंटेंट है वो मानक जो है, स्टैंडर्ड है, उससे काफी ज्यादा है। इसका मतलब इस हनी को काफी ज्यादा गर्म करके, मतलब सब स्टैंडर्ड हनी खरीदा गया, उसको गर्म करके स्टैंडर्ड के लायक बनाया गया, और ये चीज हम कंज्यूमर्स को दे रहे हैं।
इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें इसमें फिल्टरिंग होती है और उसके बाद इसको हीट प्रोसेसिंग या पैस्चराइजेशन किया जाता है, और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है। बट इसमें जो मेन इश्यू है, क्योंकि इसका इसकी काफी कमी रहती है और डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसमें इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन के चांसेस हैं कि लोग दूसरी तरह के जो शहद के जो मिमिक सब्सटेंसेस हैं, जो मतलब शहद की तरह दिखते हैं पर शहद नहीं है, उसकी मिलावट इसमें होती है, और उसके कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आती है, और जो कंज्यूमर है उसे इसके बारे में ठीक जानकारी होना बहुत जरूरी है।
हमने आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी भी सुना दिया कि बाजार में भले ही कोई भी कंपनी कहे कि उसके ब्रांड का शहद सबसे शुद्ध है, तो यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि शानदार पैकेजिंग और बड़े बड़े दावों के साथ बाजार में बिकने वाला शहद मिलावटी हो सकता है, और ये मिलावट जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि शहद में एचएमएफ की ज्यादा मात्रा कैंसर का कारण भी बन सकती है। कई शोध में ये पता चला है कि इंसान रोजाना 30 से 150 मिलीग्राम एचएमएफ ही पचा सकता है, लेकिन रोजाना एचएमएफ की इससे ज्यादा मात्रा का सेवन करने से कैंसर तक हो सकता है। खासतौर पर आंतों, लिवर या किडनी को एचएमएफ बहुत नुकसान पहुंचाता है। एचएमएफ नियोप्लास्टिसिटी पैदा कर सकता है, यानी ये शरीर के हेल्दी सेल्स को ट्यूमर वाले सेल्स में बदल सकता है। एचएमएफ की ज्यादा मात्रा जीन म्यूटेशन तक कर सकती है, यानी आपकी आनुवांशिक संरचना को बदल सकती है। इतना ही नहीं, लगातार एचएमएफ का जरूरत से ज्यादा सेवन इंसान के डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको हमारी बातों पर जरा भी शक है तो आप खुद एक्सपर्ट डॉक्टर से सुन लीजिए कि बाजार में मिलने वाले शहद में तय मात्रा से ज्यादा एचएमएफ आपको कितना बीमार बना सकता है।
जो आपने बात कही हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फुरल, ये इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कराने की प्रवृत्ति है। म्यूटोजेनिक है, मतलब परमानेंट इंसान के जीन को डैमेज कर सकता है, ये लैब में प्रूवन हो चुका। इसके अलावा एचएमएफ फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एसएमएफ में, जिसमें कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी और भी स्ट्रांग हो जाती है। ये बिल्कुल इसमें है। एचएमएफ शहद में ही नेचुरल प्रोसेस, जब शहद तैयार कर रहे होते हैं उसी बनने की एक प्रक्रिया में बनता है। इंटरनेशनल लिमिट इसकी किसी कंट्री में 10 है, किसी कंट्री में 40 है। हिंदुस्तान में लिमिट थोड़ा ज्यादा रखी गई है, ओबियस रीजन हो सकता है, लेकिन एक परमिशनल लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। लगातार शहद में ज्यादा अगर क्वांटिटी है और लंबे समय तक आप खा रहे हैं तो कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी इसमें होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है।
जो ये केमिकल है एचएमएफ, हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरपरल, ये एक्चुअली
उन प्रोडक्ट्स में बनता है जिसके अंदर कुछ शुगर की मात्रा हो, नेचुरल शुगर या फिर एडेड शुगर। और ये तब बनता है जब उसको हीट मिलती है किसी भी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हीट, अगर आप उसको हीट कर रहे हैं, जैसे आप देखें बच्चों के जो सीरियल्स हैं, जो चोको मिक्स और इस तरह के सीरियल्स हैं, तो उसमें शुगर डाल के फिर उसको हीट किया जाता है। इसी तरीके से हनी को जब आप हीट करते हैं तो उसमें ये चीज फिर टॉक्सिक हो जाती है, और ये इतनी डेंजरस है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट जैसे ये HMF जो इंग्रेडिएंट साइंस ने आइडेंटिफाई किया है, मगर हजारों साल पहले आयुर्वेद ने भी कहा था कि अगर आप हनी को हीट करते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट तो वो आपकी शरीर में टॉक्सिन का रूप ले जाता है। तो अब इन अ वे आप देखिए जो पुरानी जो नॉलेज थी वो वापस आ रही है साइंस के माध्यम से।
तो अब तो आप भी मानेंगे कि बाजार में मिलने वाला शहद जो आप सेहतमंद बनने की इच्छा से खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके बावजूद हमारे देश में डाबर जैसे बड़े ब्रांड भी शुद्ध शहद का दावा करके मिलावटी शहद बेच रहे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे देश में शहद की क्वालिटी चेक करने का जो मैकेनिज्म है वो इतना कारगर नहीं है कि शहद में मिलावट को 100% पकड़ सके। हम ये किस आधार पर कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। दिसंबर 2020 में NGO सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE ने भारत में बिकने वाले ब्रांडेड शहद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। CSE ने दावा किया था कि डाबर सहित भारत में 13 प्रमुख ब्रांड्स द्वारा बेचे जाने वाले शहद में चीनी सिरप की मिलावट पाई गई। CSE के शोधकर्ताओं ने शुद्धता की जांच के लिए उन 13 ब्रांड्स को चुना था जो भारत में प्रोसेस्ड शहद बेचते हैं। इस स्टडी में पाया गया था कि 77% सैंपल्स में चीनी सिरप की मिलावट थी। CSE की स्टडी में कहा गया है कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू हितकारी जैसे प्रमुख ब्रांड्स के शहद के सैंपल्स टेस्ट में फेल रहे। दिलचस्प बात यह है कि इन ब्रांड्स के सैंपल्स का टेस्ट सबसे पहले भारत की लैब्स में ही किया गया था और लगभग सभी सैंपल्स शुद्धता के परीक्षण में पास भी हो गए थे। लेकिन जब इन सैंपल्स का CSE ने जर्मनी की ब्रूकर बायोस्पिन लैब में एडवांस टेस्ट करवाया तो ब्रांडेड शहद में मिलावट पकड़ में आई। भारत में शहद के सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाली लैब्स की विश्वसनीयता तभी से संदेह के घेरे में है जो शहद में मिलावट को पकड़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन 3 साल पहले जब CSE ने शहद में मिलावट का खुलासा किया तब भी डाबर ने यह मानने से इंकार कर दिया था कि उसके शहद में कोई मिलावट है। और अब 3 साल बाद जी न्यूज ने डाबर के शहद में मिलावट का खुलासा किया है। तो अब देखते हैं कि इस बार डाबर क्या जवाब देती है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि बाजार में मिलने वाले शहद को लेकर चाहे कोई कंपनी जितने मर्जी दावे करे उनके शुद्ध होने की ना तो कोई गारंटी है और ना ही कोई वारंटी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के सुसाइड का साइकोलॉजिकल DNA टेस्ट करेंगे।
नदियों के किनारे बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। चीन के हेबेई प्रांत में फंसे बुजुर्ग लोगों के तक पहुंचाई जा रही है राहत। चोंगकिंग में आई बाढ़ में एक बुजुर्ग महिला बह गई, कई 14 लोगों को बचाया गया। चीनी अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर शुरू किया राहत और बचाव का काम। बीजिंग में 11 लोगों की मौत की खबर, 13 लापता, 1,27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। बाढ़ के बीच फिलीपींस में एक जोड़े ने चर्च में रचाई शादी, दुल्हन का सफेद गाउन भी बाढ़ में बहता हुआ आया नजर, घुटनों तक भरा था यहां पानी। अबुधाबी में शुरू हुई बिना ड्राइवर वाली टैक्सी, सादियात और यस द्वीप के बीच चलाई जा रही है मुफ्त टैक्सी सेवा, सड़क पर 1 साल से ज्यादा किया गया टेस्ट। दूसरी बार हुए ड्रोन हमले को लेकर रूस ने इसको खतरनाक बताया है, आतंकी हमला दिया करार, यूक्रेन ने दूसरे हमलों की नहीं ली जिम्मेदारी। फिलीपींस के उत्तरी हिस्से में डोक्सुरी तूफान का कहर जारी है, बाढ़ के चलते भारी तबाही, कई इलाकों में पानी भर गया है। फिलीपींस में कई घर बाढ़ में डूब गए हैं, निचले इलाकों में 7 फीट तक पानी भर चुका है, नाव के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है।
फिलीपींस के कई हिस्सों में जलभराव, लोग घर में कैद रहने को मजबूर हैं, लोगों की गाड़ियां भी जलमग। कोलंबो में लंका प्रीमियर लीग खेल के दौरान क्रिकेट मैदान में दिखा सांप, घबराए दर्शक और खिलाड़ी, बाद में सांप को जंगल में छोड़ा गया। नाइजीरिया की राजधानी लागोस में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, शहर के व्यस्त इलाके इकिजा में गिरा हेलीकॉप्टर, दो लोगों को बचाया गया। लिथियम खनन का विरोध करने अर्जेंटीना में जुटे सैकड़ों लोग, झंडे बैनर और वाद्य यंत्रों के साथ सड़कों पर निकाला गया मार्च, पर्यावरण बचाने के लिए लगाए गए नारे। खैबर पख्तूनख्वा धमाके में घायल लोगों से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने मुलाकात की, अस्पताल में जाकर उनका हालचाल जाना। तीसरे वनडे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रनों से हरा दिया, गिल ईशान पंड्या और सैमसन ने जड़ा अर्धशतक। टीम इंडिया की विंडीज में सबसे बड़ी जीत, भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। एशियन गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का ऐलान, चीन में होंगे मुकाबले, अंडर 23 टीम के साथ जाएंगे सुनील छेत्री, छिंगन और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू। एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के लिए भारत पहुंची पाकिस्तान की टीम, चेन्नई में 3 अगस्त से होना है टूर्नामेंट, 9 अगस्त को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। आईसीसी ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का पोस्टर जारी किया, 5 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया से होगा भारत का पहला मैच। ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर हुआ आउट, डबल रोल करते हुए नजर आया आयुष्मान खुराना, 25 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म घूमर का फर्स्ट लुक आउट हुआ, लीड रोल में सियामी खैर और अभिषेक बच्चन आ रही है नजर, 18 अगस्त को फिल्म होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड ने बिना कैंची चलाए पास की OMG 2, अक्षय कुमार की फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापस लौटेंगी दिशा वकानी, प्रोड्यूसर असित मोदी ने कंफर्म किया, 6 साल बाद शो पर वापसी करेंगी एक्ट्रेस। चंदू चैंपियंस के कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक आउट हुआ है, अगले साल 14 जून को रिलीज होगी उनकी फिल्म। हिंसा के बाद हरियाणा अलर्ट पर है, बता दें कि गुरुग्राम के पटौदी, मानेसर और सोहना इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी के साथ साथ गुरुग्राम में अधिकतर ऐसे इलाके जहां पर इंटरनेट बंद है। गुरुग्राम में खुले में पेट्रोल की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, सीएम इसे सुनियोजित साजिश भी बता चुके हैं। उधर हरियाणा में पुलिस उपद्रवियों की तलाश में लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है, गुरुग्राम और उसके आसपास असामाजिक तत्वों ने कई दुकानों में आग लगा दी, रात भर वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। दूसरी बड़ी खबर आज की, विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के नेता आज मणिपुर के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, सुबह 11 बजे इंडिया के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और मणिपुर के विषय पर राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आज की, 2024 की तैयारी के लिए पीएम मोदी आज एनडीए के सांसदों के साथ तीसरे और चौथे चरण की बैठक करने वाले हैं, 6:30 बजे शाम की बैठक में यूपी में काशी, गोरखपुर, अवध के सांसद मौजूद रहेंगे, 2 अगस्त को ही 7:30 बजे शाम को तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के सांसदों की भी बैठक होने जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नूह बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन लिया है, अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्होंने जानकारी ली है, फोन पर गृह मंत्री ने बातचीत की है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बता दें कि नूह में सोमवार को हिंसा भड़की थी और उसके बाद लगातार पुलिस की भारी मौजूदगी वहां पर है, और ऐसे में अब गृहमंत्री अमित शाह ने नूह बवाल पर यह एक्शन लिया है कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल से फोन पर बात की है।
हमारे देश के कई इलाकों में इस बार जबरदस्त बारिश हुई है, बारिश की वजह से पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुई, तो राजस्थान, गुजरात और असम में बाढ़ की स्थिति बन गई। लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, चीन में भी ठीक इसी तरह की स्थिति बनी है। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो भारत के पड़ोसी देश चीन की है। चीन इस वक्त भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, चीन की राजधानी बीजिंग बाढ़ में डूबी हुई है, लगातार 4 दिन से चीन में बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी चीन के कई रेलवे स्टेशन में भर गया, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में भी पानी भर गया, बाढ़ ने ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगा दिए, कई जगहों पर बाढ़ इतनी भीषण है कि मकानों और गाड़ियों को साथ बहा ले गई। इस विनाशकारी बाढ़ के आगे चीन जैसा शक्तिशाली देश भी असहाय हो गया है। तूफान डॉक्सुरी की वजह से चीन में पिछले चार दिन में इतनी बारिश हुई है जितनी पूरे साल में नहीं हुई थी। तूफान डॉक्सुरी ने 28 जुलाई को पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में दस्तक दी थी। तभी से चीन में भीषण बारिश हो रही है। तूफान डॉक्सुरी उत्तरी चीन में पिछले एक दशक में आया सबसे भयानक तूफान। तूफान डॉक्सुरी ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तरी चीन में मचाई है। भारी बारिश की वजह से 20 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ में सैकड़ों घर और गाड़ियां बह गए। सिचुआन प्रांत में ही 4,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हेनान प्रांत में 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेनान प्रांत में बाढ़ से 2,000 से ज्यादा घर तबाह हुए। तियानजिन इलाके में 35,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बीजिंग के दो हवाई अड्डों से 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राजधानी बीजिंग में जहां राष्ट्रपति कार्यालय है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, चीन की सेना का मुख्यालय है, वहां बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी है। चीन के कई बड़े बड़े शहरों की सड़कें नदियों में बदल गई हैं और ये हजारों लोग अब भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। चीन में वर्ष 1998 में भी भीषण बाढ़ आई थी। उस वक्त 4,000 से ज्यादा लोगों की बाढ़ से मौत हुई थी। उसी तरह की आपदा में चीन एक बार फिर फंसा हुआ है। इसकी एक वजह जलवायु परिवर्तन भी है, जिसका असर चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिख रहा है। तबाही की अभी जो वीडियोस आपने देखे वो सिर्फ कुछ वीडियोस हैं, लेकिन हर वीडियो में भारी तबाही दिख रही है। बीजिंग चीन का पावर सेंटर है, लेकिन आजकल इसी पावर सेंटर पर पानी का कब्जा है। हम आपको बाढ़ से हुई तबाही पर एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि चीन कैसे कुदरत की मार झेल रहा है।
घर बह गए, कारें बह गई, बड़े बड़े भारी भरकम कंटेनर बह गए, सड़कें और पुल बह गए। ये तैरता चीन है, जहां चार दिन की बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है। सुपर पावर की धौंस दिखाने वाला चीन कुदरत की मार झेल रहा है। डॉक्टरी तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तरी चीन में मचाई है। बीजिंग को चार दिन की बारिश ने समंदर बना दिया है। एयरपोर्ट पानी में डूबा हुआ है। जिस रनवे पर हवाई जहाज फर्राटा भरते थे, वहां अब पानी का कब्जा है। 140 सालों में बीजिंग में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से राजधानी बीजिंग तबाही के भंवर जाल में फंसी है। बीजिंग के सड़कों पर या तो पानी है या फिर कीचड़। लोगों की जिंदगी भर की कमाई पानी में बह गई। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। राजधानी में हालात इतने खराब हैं कि शहर के अंदर ही रेत की बोरियों का बांध बना दिया गया है, ताकि पानी को रोका जा सके। बीजिंग में कई राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय हैं, लेकिन बारिश और बाढ़ ने शहर को कारों का कब्रिस्तान बना दिया है। बाढ़ में कारें तिनके की तरह बह रही है। खेवई प्रांत में नदी उफान पर है, जिसमें एक कार बह गई। तभी कार से एक शख्स निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया। किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई। बाढ़ ने जिंदगी पर कैसे अटैक किया, इसे इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। जहां पानी में एक बुजुर्ग महिला फंस गई, महिला ने जान बचाने के लिए एक जाली को पकड़ लिया। तभी एक शख्स उसे बचाने पहुंचा। कुछ मिनट की और देरी होती तो शायद महिला पानी में डूब जाती। ये वीडियो भी चीन का है, जहां भारी भरकम कंटेनर बहने लगे। गोदाम में रखे भारी भरकम बॉक्स भी बह गए। शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, उन सड़कों पर पानी बह रहा है। कुदरती आपदा को देखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
这一次保供的物资呢，主要分两类，一类是食品，但是呢又考虑到这个现场呢，对于这个自来水的这个供应呢会非常的少，所以呢我们也准备了一些自热型的方便面。बीजिंग
के आसपास के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली 100 से ज्यादा सड़कें टूट गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें हो रही है। चीन जिस तरह से कुदरत का कहर झेल रहा है, उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। विकास की अंधी दौड़ में सबसे आगे रहने की उसकी सनक अब उस पर ही भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
डीएनए में अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो दुखद तो है ही, हम सबके लिए एक अलार्म भी है। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें दरअसल कुछ बेहद कामयाब फिल्मों के पोस्टर्स हैं, जिसमें संजय लीला भंसाली की देवदास और हम दिल दे चुके सनम भी शामिल है। तो वहीं आशुतोष गवारीकर की लगान और जोधा अकबर भी शामिल है। अलग अलग बैनर और जॉनर की इन फिल्मों की स्टार कास्ट भी अलग थी, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन थी और वो थे नितिन देसाई। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने ही इन सभी फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे, लेकिन अब वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने स्टूडियो में ही रात करीब 3:30 बजे फांसी लगा ली। नितिन चंद्रकांत देसाई ने वर्ष 1987 में गोविंद नेलानी के मशहूर टीवी शो तमस से अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, 1942 अ लव स्टोरी, लगान, स्वदेश, देवदास और जोधा अकबर जैसी फिल्मों के लिए भी सेट्स तैयार किए। सेट्स बनाने की उनकी कला ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक अलग मुकाम दिलवाया और इसीलिए उन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें वर्ष 1999 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वर्ष 2000 में हम दिल दे चुके सनम, वर्ष 2002 में लगान और वर्ष 2003 में देवदास के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सिने जगत में नितिन देसाई की अपनी अलग जगह थी और ये जगह उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बनाई थी, और इसीलिए जब ये खबर सामने आई तो सिर्फ सिनेमा जगत ही नहीं, खबर सुनने वाला हर इंसान हैरान हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर नितिन देसाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जो शख्स न जाने कितनी चुनौतियों से लड़कर इस मुकाम तक पहुंचा हो, वो अब किस चुनौती के सामने हार गया। अपनी इस रिपोर्ट में हमने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास किया है।
जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने मंगलवार देर रात खुदकुशी कर ली। उनका शव उनके कमरे में फंदे से झूलता मिला। जानकारी के अनुसार नितिन देसाई कल रात दिल्ली से लौटने के बाद करजत स्थित अपने स्टूडियो पहुंचे थे। स्टूडियो पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मैनेजर से वॉइस रिकॉर्डर मांगा। वॉइस रिकॉर्डर लेकर वो सीधे अपने कमरे में चले गए। सुबह जब स्टाफ वापस आया तो उन्हें नितिन देसाई के कमरे का दरवाजा बंद मिला। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो कर्मचारियों ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, जहां अंदर उन्हें नितिन देसाई का शरीर फंदे से झूलता नजर आया।
हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये नवी मुंबई का करजत का इलाका है और जो स्टूडियो आप देख रहे हैं ये बहुत फेमस एनडी स्टूडियो है। अपनी कला यानी अपने आर्ट डायरेक्शन के लिए जाने माने नितिन देसाई ने ऐसा बताया जा रहा है जो सुसाइड किया है वो कल रात को किया है। कल रात को तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब नितिन देसाई आते हैं दिल्ली से, सीधे फ्लाइट से वो मुंबई नहीं जाते अपने घर, वो अपने नवी मुंबई के करजत के इस 58 एकड़ का जो उनका ये एनडी स्टूडियो है वो यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करते हैं। मैनेजर से एक वॉइस रिकॉर्डर मांगा जाता है। वॉइस रिकॉर्डर में कुछ पर्टिकुलर साउंड्स हैं जिनको कैप्चर किया जाता है। उसके बाद वो स्टूडियो चले जाते हैं, स्टाफ अपने घर चला जाता है। आज सुबह के वक्त जब वापस से स्टाफ आता है, मैनेजर आते हैं, जब नॉक किया जाता है तब वो दरवाजा नहीं खुलता।
कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ छानबीन शुरू की। पुलिस के सूत्रों के अनुसार नितिन देसाई ने सुसाइड करने से पहले कुछ ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त करके जांच के लिए भेज दिया है।
जगह पर जो जो हमें मिला है, मोबाइल मिला है या जो जो हमें मटेरियल मिला है वो हमने सीज किया है और हम तहकीकात कर रहे हैं। अब तक जो है कहने की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें मिले हैं उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं।
नितिन देसाई का मुंबई से करीब 65 किलोमीटर दूर करजात में अपना स्टूडियो भी था। करीब 52 एकड़ में फैले स्टूडियो को उन्होंने वर्ष 2005 में शुरू किया था और तब से ये डेस्टिनेशन फिल्म और टीवी शोज की शूटिंग के लिए पसंदीदा जगहों में से एक। हालांकि साल 2020 में कोरोना के बाद वहां फिल्मों की शूटिंग काफी कम हो गई थी। एनडी स्टूडियो में शूट होने वाली आखिरी बड़ी फिल्म पानीपत थी। सूत्रों के मुताबिक नितिन देसाई इसी एनडी स्टूडियो को डिज्नी वर्ल्ड की तर्ज पर डेवलप करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 180 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन वो ये लोन नहीं चुका पाए और वो बढ़कर करीब 250 करोड़ तक पहुंच गया था। सूत्रों के अनुसार नितिन देसाई को डर था कि अगर वो ये लोन नहीं चुका पाए तो उन्हें उनका स्टूडियो छोड़ना पड़ सकता है और इससे वो डिप्रेशन में थे।
आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने आत्महत्या की। तभी वहाँ के हमारे जो उस हिंदी स्टूडियो में काम करने वाले सभी मैन पावर सप्लायर भी हमारे ही कार्यकर्ता है, जिनके भी कई दिनों से बिल नहीं मिले हैं, उसके लिए हमारी एक बैठक भी हुई। तो फिर उन्होंने मुझे समझा के बोला था कि बहुत कुछ दिनों का समय है, निकलेगा, फिल्में आएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
नितिन देसाई 198 फिल्मों और 200 से ज्यादा टीवी शोज में काम कर चुके थे। उन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इसलिए जब ये दुखद खबर सामने आई तो सिनेमा जगत भी हैरान रह गया।
We have no words to express our condolences because we have lost a great technician, a great artist who created visuals with his talent, with his art on big screen. A man who never thought that things are difficult.
हर तरह से उनका योगदान हर जगह होता था। अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके रिलेशन होते थे। कोई भी पॉलिटिकल रैली हो, कोई भी कल्चरल फंक्शन हो, उनकी उनका प्लेटफॉर्म बनाना या उनका कोई गणपति का अपना पंडाल बनाना, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहा है।
पुलिस के अनुसार ये पहली नजर में खुदकुशी का ही मामला है, लेकिन फिर भी इस घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
नितिन देसाई 58 वर्ष के थे और इसी 9 अगस्त को वो 59 वर्ष के हो जाते। जानकारी के अनुसार नितिन देसाई पर करोड़ों का कर्जा था और इसे ही उनकी आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन नितिन देसाई ऐसा पहला नाम नहीं है। इससे पहले भी हम कई प्रतिष्ठित और जानी मानी हस्तियों की आत्महत्या की खबरें देख चुके हैं और इन हस्तियों में फिल्म और टीवी कलाकार ही नहीं, भैरव जी महाराज जैसे आध्यात्मिक धर्मगुरु और सीसीडी के फाउंडर रहे विजी सिद्धार्थ जैसे बिजनेसमैन का भी नाम है। यही नहीं, आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों की खुदकुशी की खबरें भी हम सुनते रहते हैं। ये वो लोग थे जिन्हें समाज में कामयाब माना जाता है और जो औरों के लिए मिसाल थे। ये वो लोग थे जिन्हें देखकर लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। ये लोग उम्र और कामयाबी के मुकाम पर थे। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई मुश्किलें, कई चुनौतियों का सामना किया, इसलिए इन्हें कमजोर भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस मुकाम पर पहुंच चुकने के बाद जिंदगी के सामने हार कैसे मान ली? आखिर ऐसा कौन सा दबाव था जिसे ये नहीं झेल सके और मौत को गले लगा लिया?
बहुत तेज रफ्तार की जिंदगी है और बहुत इंटेंसिव फाइनेंशियल चेंजेस इंसान की जिंदगी में जब आते हैं, जैसे सुनने में आया है, वहां पर पारिवारिक व्यक्तिगत मेनली ये दो कारण है। पारिवारिक संवाद कम हो जाता है, कुछ बातें उलझन में जो होती हैं वो सुलझाई नहीं जा सकती हैं। इंसान कहीं ना कहीं अपने आप से फना होने लगता है, अपने आप से गुम होने लगता है। बातचीत कम हो जाना, कहीं ना कहीं संकोच की जो भावना होती है, जो एक मन की दहशत होती है, वो पहचानी नहीं जाती है। तो फैमिली एंड पर्सनल लाइफ जो होती है सबसे पहले वो ठोकर खाती है। कहीं ना कहीं इंसान में एक उदासीनता की जो भावना होती है या उसका एक बेबस रहने का जो एक मिजाज का मसला होता है और लो सेल्फ एस्टीम, निराश हो जाना, ये बातों को पहचाना नहीं जाता है कई बार।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल करीब 7 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में अकेले भारत में ही 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें भी 67% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की थी, यानी खुदकुशी के करीब 1/4 मामले तो अकेले भारत में दर्ज किए गए हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है और ये बेहद चिंताजनक तस्वीर है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में आत्महत्या करने वाले 33.2% लोगों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से अपनी जान दे दी, जबकि 4.8% लोग ऐसे थे जो अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं थे। यही नहीं, प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या भी 4.6% है, जबकि इसी वर्ष बेरोजगारी की वजह से 2.2% और गरीबी या खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 1.1% लोगों ने खुदकुशी की थी। NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में करीब 43% लोगों ने रिश्तों की वजह से अपनी जान दे दी। जरा सोचिए, ये वो रिश्ते हैं जिनका आधार ही प्रेम है, ये वो रिश्ते हैं जिनका होना हमारे और आपके लिए ऑक्सीजन से कम जरूरी नहीं, लेकिन अब जीवन देने वाला प्रेम भी रिश्तों में जहर घोलने लगा है। आज भारत में हर घंटे करीब 18 से 19 लोग अपनी जान ले रहे हैं और ये हमारे पूरे समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि आज लोग अकेले हैं, इतने ज्यादा कि वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी चिंता किसी से साझा तक नहीं करते, किसी से मदद तक नहीं मांगते। वैसे भी हमारे यहां डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। अगर लोग किसी किस्म से डिप्रेशन या तनाव से जूझ भी रहे हों तो वो इसे बताने से भी हिचकिचाते हैं और इससे अकेले ही जूझते रहते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, फिर चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग, चाहे अमीर हो या गरीब, डिप्रेशन किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए अगर आप या आपका कोई अपना ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहा है तो उसमें आने वाले बदलावों को महसूस कीजिए, उससे बात कीजिए, उसे अकेलेपन का एहसास मत होने दीजिए, उसे यकीन दिलाइए कि स्थिति से भी लड़ा और जीता जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं। और अगर जीने का जज्बा और हिम्मत हो तो आप अरुणिमा सिन्हा की तरह बिना पैरों के एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं, और अवनी लेखरा की तरह व्हील चेयर पर होने के बावजूद गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं। इस दुनिया में हिम्मत और हौसले की ऐसी ना जाने कितनी ही मिसालें हैं जिन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी, उनका सामना किया और वो सब कुछ दोबारा हासिल किया जो उन्होंने गवा दिया था। और ऐसे उदाहरण देखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे लोग आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जीवन जीने का नाम है हार मानने का नहीं। तो आप खुद पर विश्वास रखिए, और अगर जीवन में कुछ असफलताएं मिली तो निराश मत होइए, कमियों को ढूंढिए, उन्हें दूर करिए और फिर दोबारा प्रयास करिए, यही तो जीवन है। अगर आपके पास डीएनए को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव या राय है, या आप चाहते हैं कि हम समाज या आपसे जुड़ा कोई मुद्दा डीएनए में उठाएं, तो आप हमें वीडियो मैसेज के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588805811। ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।